मिलिट्री में लोग मरते हैं तो उनको फुल आनर्स देते हैं, जब तक उनकी आयु पूरी हो, ये भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत बनने की रेस है, कौन पहले योग लगाते हैं और रुद्रमाला में जाते हैं वो देखेंगे। पहले तो मुख्य है मम्मा बाबा, दो दाने वो तो प्रसिद्ध हैं, बाकी है नंबरवार। पास विद आनर्स को फुल आनर्स मिलती है। वो मांस आदि कुछ नहीं खाते हैं, उनका मान मर्तबा बहुत होता है। ऐसे तो हमेशा नवरत्न कहे जाते हैं, आठ नहीं तो चार जोड़े हो जाते हैं, बाकी है एक बीच में, उसको बीच में डालते हैं। वो लोग तो अर्थ कोई नहीं समझते हैं, जिसने जो राय दी ऐसा बनाए देते हैं। ये जैनी लोग हठ कितना सिखलाते हैं, एक एक बाल बैठ निकालते हैं। ये तो हिंसा की बात हो गई, हिंसा का संन्यास, दुख देने का संन्यास। तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, तुमको तो टेम्पटेशन देकर तुमसे विकारों का संन्यास कराते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर हमने जन्म बाई जन्म 63 जन्म मूत पिया है, देवताएं कोई मूत नहीं पीते हैं, उनका तो जन्म भी दिव्य होता है। ये नाले सिवाय तुम्हारे और कोई में नहीं है, बरोबर तुमने 84 का चक्कर लगाया। अभी हम वापस जाते हैं, जितना योग में रहेंगे तो तुम पवित्र बन सकेंगे। याद में रहें और सर्विस करते रहें तो उनको जास्ती फल मिलेगा। ये सारी बुद्धि की रेस है, बाबा तो मोस्ट बिलीव्ड है, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। वो माता पिता तो बिख का वर्षा देते हैं। अभी देखो बिख पर भी गवर्नमेंट ने केस किया, परंतु खुद ही मुझे जाते हैं कि क्या करें। वो कहते हैं हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो हम अपवित्र कैसे बनेंगे? अगर हम कहें अपवित्र बनो तो हमारे ऊपर दोष आ जाए। फिर देखो खुद ही मुझे जाते हैं, कोई भी जज ऐसे नहीं कहेगा कि तुमको काम कटारी जरूर चलानी पड़ेगी, ऐसा जजमेंट कोई भी जज नहीं दे सकता। विवेक अंदर खावेगा, कहेंगे ये फिर कौन है, कहां से आए हैं, ऐसा केस चला था, फिर वहां की बातों को वहीं छोड़ दिया। अब जज क्या कहे? बाबा को कलेक्टर आदि ने कहा दादा इनको कह दो कि बिख देवें, अगर बिख नहीं देवेंगे तो बहुत हंगामा हो जाएगा, ये सब मिलकर के आपको मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, परंतु बाबा कैसे कहेंगे? बाबा समझाते हैं तुमको तो कोई भी मार नहीं सकता है, कोई घोड़े आदि को भी मारे तो भी केस हो जाए, परंतु इनों का मोह रहता है, बहुत मोह रहता है, पति में कितना मोह रहता है, बच्चों में कितना मोह रहता है। बाबा का भी बच्चों में मोह है ना, परंतु शुद्ध मोह है। शुद्ध मोह करना अब बाबा ही सिखाते हैं, बाकी तो साहब का है अशुद्ध मोह। अभी बाप कहते हैं मुझे एक में मोह रखो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। बुद्धि में रहना चाहिए, हम पवित्र बन स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अगर एक जन्म बिखरने दिया तो क्या हर्जा है, अगर बिखर देंगे बिखर लेंगे तो वर्षा गंवावेंगे। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कौन पास होंगे, कई तो ईश्वर की संतान पर फिर भस्मासुर बन पड़ते हैं। माया ऐसा जोर से थप्पड़ मार देती है, इसलिए सदैव श्रीमत पर चलना चाहिए। माया वार कर लेती है तो फिर उस समय पता नहीं पड़ता है, सिवाय बाप के कोई भी मनुष्यों को देवता बनाए नहीं सकता। बल सब गीता पढ़ते आए हैं, परंतु गीता पढ़ने से क्या फायदा हुआ? जैसे वो लोग वो ब्राह्मण मुरली पढ़ते हैं, परंतु मुरली पढ़ने से क्या फायदा होगा? इनको भी बाबा कहते हैं गीता आदि तुम बहुत पढ़ते आए हो, फिर उसे गीता पढ़ने से तुम्हारा क्या कल्याण हुआ? सिर्फ पढ़ने मात्र से कल्याण थोड़ा ही होगा, पढ़ करके फिर समझना भी तो चाहिए। पहले तो इनसे पूछेंगे जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो फिर भी पतित बन पड़े, ऐसे क्यों हुआ? तो बाप कहते हैं ये सब अंधश्रद्धा को बढ़ाने वाली भक्ति मार्ग की सामग्री है, तो पतित तो बनना ही है, पावन बनाने का नॉलेज है ही बाप के पास। अभी तो रावण राज्य है, रावण का भी बुत बनाते जाते हैं, सतयुग में थोड़े ही रावण का बुत बनावेंगे। ये बातें भी आगे नहीं समझते थे। रावण को जलाते हैं फिर कहते हैं अब लंका को लूटो। एक झाड़ होता है जिसमें बीमारी लग जाती है पीले रंग की, तो वो समझते हैं ये सोना है, वो सोना निकाल करके पॉकेट में रखते हैं। अब वो कोई सोना थोड़े ही होता है, सचमुच ये रावण अभी मरता है और फिर तुमको सोने की राजाई मिल जाती है। उन रावण का बुत बनाने वालों को तो कोई भी राजाई नहीं मिलेगी, तुम्हारे लिए सतयुग में सोना ही सोना होता है, वैकुंठ में तो ढेर का ढेर सोना, तो ऐसी सोने की पुरी में तुम जाते हो, वहां सोने की ईंटें बनती हैं, बिगड़े ईंटों के थोड़े ही महल बन जाएंगे। या मिट्टी की ईंटें देखो कितनी महंगी मिलती है, वहां तो सोने की ईंटों के महल बना देंगे। अब ये स्थूल ईंटों की बात है या चैतन्य ईंटों की बात है? स्थूल महलों की बात है, स्थूल किलों की बात है या चैतन्य संगठन रूपी किलों की बात है? बेहद का बाप आकर के बेहद की बातें सुनाते हैं, तो ऐसी बेहद की बातें सुनकर के तुम बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। बाप दादा के तुम सन्मुख बैठते हो, बाप का बच्चे में मोह जास्ती होता है, बेहद के बाप का तो सब बच्चों में मोह होता है, क्योंकि डाढ़े से वर्षा मिलता है। साहब को चोला स्त्री का हो व पुरुष का हो, यहाँ वर्षा तो साहब को मिलेगा। पुरुषार्थ की बात है, मनुष्य जास्ती में जास्ती 84 नाम लेते हैं, क्योंकि 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्म होंगे तो 84 शरीर होंगे, 84 नाम होंगे। बाबा का तो एक ही नाम चला आता है, क्योंकि बाबा तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। बाबा का तो एक ही नाम शिव है, उनके शरीर का नाम नहीं है, ये उनकी बिंदु रूप आत्मा का नाम है। बाबा को शरीर है ही नहीं, इस ब्रह्मा का नाम बदल फिर नारायण नाम पड़ेगा, फिर शरीर बदलेगा तो फिर नाम बदलेगा। मैं तो सदैव सबका कल्याणकारी एक ही शिव हूँ। अभी तुम बच्चों को वासना आती है कि हम माता पिता के पास सन्मुख बैठे हैं, अभी उनसे हम डायरेक्ट सुन रहे हैं, ये तुमको भाषण आती है, किन से सुन रहे हैं? एक से सुन रहे हैं या माता पिता से सुन रहे हैं? दोनों से सुन रहे हैं। क्या कहेंगे? है एक है शिव, जो समझने के लिए समझाने वाला है, बाकी राम कृष्ण की आत्माएं निमित्त बनती हैं। रथ न हो तो कैसे समझावेंगे? तो प्रैक्टिकल समझाने के लिए माता का रूप धारण करते हैं, इसलिए कहते हैं कर्मों में इन ब्रह्मा को फॉलो करो और बात मेरी मानो, आज्ञा मेरी मानो, मेरी श्रीमत पर चलो, परंतु शंकर को फॉलो नहीं करना है कर्मों में, कर्मों में फॉलो करने के लिए ब्रह्मा को फॉलो करो। तो एक ही तन है, व्यक्तित्व एक ही है, परंतु उसमें पार्ट बजाने वाली आत्माएं दो हैं। भक्ति मार्ग में उनको अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाई दिया है, आधा पुरुष का रूप आधा स्त्री का रूप। तो तुम बच्चों को माता पिता दोनों की भाषा आती है, समझते हो हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं, उनसे हम डायरेक्ट सुन रहे हैं। अच्छा शिकील दे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। क्या प्रातः क्लास है 17 जून 1964 रिकॉर्ड चला है माता तू है सबकी भाग्य विधाता बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी यूं तो हर एक को अपनी अपनी माँ है परंतु ये है फिर सारे जगत की अम्बा और तुम तो ये जानते हो ये किसकी महिमा है जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है ये संगम युग के मिलन मेले की यादगार है तो कोई बताए ये जगदम्बा कौन है परंतु ये बात तो कोई भी नहीं जानते परमपिता परमात्मा अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि ये जो सबसे ऊंचे हैं उनों की जीवन कहानी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते अभी तुम जानते हो जगदम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगदम्बा को जितनी भुजाएं आदि दिखाई हैं उतनी भुजाएं तो कोई है नहीं देवियों को भुजाएं दिखाई देते हैं वास्तव में मनुष्यों को भुजा तो दो ही होती है और परमपिता परमात्मा तो है निराकार बाकी मनुष्यों को हैं दो भुजाएं स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण को भी दो भुजाएं हैं सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण दिखाया गया है सूक्ष्म वतन में भी मम्मा बाबा हैं विष्णु का भी साक्षात्कार होता है दो भुजाएं लक्ष्मी की दो भुजाएं नारायण की बाकी मनुष्य की कोई चार भुजाएं नहीं होती हैं ये तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाई है कि विष्णु रूप 100% संस्कार मिलन मनाने वालों के सहयोगी आत्माएं हैं जो पति पत्नी के रूप में 21 जन्म के लिए आपस में संस्कार मिलाए लेते हैं वो देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं परंतु वे स्थूल भुजाएं तो हैं नहीं सरस्वती लक्ष्मी काली आदि आदि अनेक प्रकार के चित्र बनाए दिए वास्तव में कुछ भी है नहीं ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार हैं और तुम तो अभी भगत नहीं हो तुम वो गॉडफादरली स्टूडेंट क्योंकि पढ़ाई पढ़ रहे हो भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं वो भक्त तो हैं अंधश्रद्धा वाले अंधश्रद्धा के कारण बिना समझे ही सबके चित्र रखते रहते हैं कृष्ण का भी रखेंगे तो लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक हनुमान आदि का भी रखेंगे। जैसे चू चू का मुरब्बा होता है ना, ऑक्यूपेशन तो कोई का भी जानती नहीं, मालूम होना चाहिए ना। इनों को हम क्यों पूजते हैं, भला इनमें ऊंचते ऊंच कौन है। हनुमान बंदर जैसा तो कोई होता नहीं है, क्या क्या बैठ बनाया है। भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त दिखाते हैं नारद, और फीमेल्स में शिरोमणि भक्त रखा है मीरा को। कहानी लिख दी है कि जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था तो नारद लक्ष्मी को नहीं बर सका। अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है ना, ये तो नरक की दुनिया है। तो ये एक दृष्टांत बताया जाता है, संगम युग का दृष्टांत है। वास्तव में कोई एक नारद व मीरा की बात नहीं है, द्रौपदी भी तो एक नहीं है। इस समय के सब मेल्स फीमेल्स द्रौपदी और दुर्योधन है, दुशासन द्रौपदियों को नग्न करते हैं। बरोबर द्रौपदियां माताएं पुकारती हैं, हे भगवान हमको नग्न होने से बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं भगवान साड़ी देते जाते हैं, कहते हैं 21 जन्म नग्न होने से बचाया। अभी तो बाप आए हैं सब द्रौपदियों की रक्षा करने के लिए। तुम श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी नग्न नहीं होंगे, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते हैं बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे, बाप कहते हैं बच्चे अपने दिल दर्पण में देखो कि हम ऐसे लायक बने हैं। भक्त तो इस समय सब बंदर है, नारायण का रूप बंदर का दे दिया ना, क्योंकि हरेक मनुष्य मात्र में 5 विकार प्रवेश है। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं थे, अभी तो संपूर्ण विकारी है। सतयुग में तो एक बच्चा होता है, सो भी योग बल से पहले ही साक्षात्कार हो जाता है। जैसे तुम साक्षात्कार करती हो, हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस की आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण साथ रास करेंगे। तो बाबा ने समझाया है इतनी भुजाएं वाली देवियां नहीं होती हैं। लक्ष्मी नारायण को 2 भुजाएं हैं, इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। देवी देवता डिनेस्टी है ना, तो इसको कहा जाता है विष्णु डिनेस्टी। इसको मां लक्ष्मी व नर नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, और महालक्ष्मी को भी चतुर्भुज के रूप में दिखाते हैं। लक्ष्मी का भी दिखाते हैं, परंतु लक्ष्मी को जगदम्बा तो नहीं कहेंगे। लक्ष्मी तो कोई बी के नहीं है, बी के तो यहाँ हैं, सतयुग में तो बी के होते नहीं। सरस्वती भी गाई हुई है, ब्रह्मा की मुखवंशावली सरस्वती, तो बी के सरस्वती को कहा जाता है, ब्रह्मा की कुमारी जगदम्बा। बरोबर तुम जानती हो प्रजापिता ब्रह्मा की हम मुखवंशावली हैं। एक है वो कलयुगी ब्राह्मण और दूसरे तुम हो संगमयुगी ब्राह्मण। वो ब्राह्मण है जिसमानी यात्रा कराने वाले कुखवंशावली, और तुम बने हो मुखवंशावली रूहानी यात्रा कराने वाले। तुम सब ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हो। मुखवंशावली हो, मुख से वाणी सुन करके तुमको निश्चय पैदा होता है, तो तुम ब्राह्मण जाकर के मनुष्य से देवता बनते हो। उन देवताओं में मुख्य है ब्रह्मा, जिसकी इतनी महिमा होती है। सत्रह छह चौसठ की वाणी का दूसरा पेज, वो मम्मा है स्वर्ग की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तुम भी इनकी संतान ठहरे। जगदम्बा राजयोग सीखती है, जिसमें 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, इसलिए इनका गायन है शिव शक्ति सेना। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता है, और प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा को तो कितने ढेर के ढेर बच्चे। तो जगदम्बा को भी दो भुजाएं हैं, वैसे ही लक्ष्मी को भी दो, नारायण को भी दो भुजाएं। परंतु चित्रों में तो बहुत हंगामा कर दिया है, कब नारायण को काला लक्ष्मी को गोरा बनाए देते। अब ऐसे तो हो नहीं सकता। जो सतयुग में लक्ष्मी गोरी हो और नारायण कालो, तो कहाँ की बातें हैं, ये तो संगम युग की बातें हैं। पुरुषार्थी जीवन में नारायण सांवरा दिखाया है, कन्याओं में धारणा ज्यादा होती है, कन्याओं माताओं में धारणा ज्यादा होने के कारण उनको धरणी कहा जाता है। तो लक्ष्मी को गोरा दिखाया है, कृष्ण सांवरा और राधे गोरी। तो बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में तो इस समय सभी सांवरे हैं, परंतु पुरुषार्थी जीवन में लक्ष्य रखने की बात है। तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, फिर काम शिक्षा पर बैठने से काले हो गए हो। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं ना, तो सुंदर है सतयुग त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम बने। कष्ट की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, तो बाद के जन्मों में वो नाम थोड़ा ही पड़ता है। इस समय वो आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है, सतयुग आज में है, देवी देवताएं वो आज के देवी देवताएं ही 84 जन्म लेंगे। तो ये तुम्हारा 84 जन्मों का चक्कर है। अभी तुम बच्चों ने महिमा की सुनी, मम्मा की महिमा अलग है और लक्ष्मी की महिमा अलग है। क्यों है? मम्मा है सारे जगत की अम्बा और लक्ष्मी है भारत की माता। तो देखो भक्ति मार्ग में यादगार कैसे कैसे चित्र बनाए हैं। काली की जीभ देखो कैसी दिखाते हैं, अब ऐसी लंबी जीभ वाला तो कोई मनुष्य होता नहीं है। कहते हैं ना इसकी जीभ बड़ी लंबी है, तो इसका अर्थ होता है बहुत बोलने वाली है। सरस्वती को कहते भी है वाक देवी, वाणी की देवी कहा जाता है, और सूक्ष्म वतन में भी ऐसे काले तो होते नहीं है। शंकर पार्वती सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, विष्णु तो है ही युगल, ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम सूक्ष्म वतन में देखते हो। फिर कहते हैं ऐसे भयानक कहां से आए, ये काली का रूप बहुत भयानक दिखाते हैं। अब ऐसी कोई शक्ति थोड़ी ही होगी, वायलेंस करने वाली हिंसक शक्ति, हर एक बाप के लिए बाप समझाते हैं। चित्र तो किस्म किस्म के बनाए गए हैं, चरित्र की यादगार हैं, बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनसे ऊपर होता है मूल वतन, जहां शिव और शालिग्राम रहते हैं, बस और तो कुछ भी नहीं है। बाकी इतने चित्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में ये होते नहीं है, संगम युग में समझने की बातें हैं। तो ये ज्ञान और भक्ति की बात है, ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति अर्थात रात। ब्रह्मा का दिन ज्ञान है और ब्रह्मा की रात भक्ति है। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। अभी तो घोर अंधेरी रात है, फिर दिन भी होना है। बाप कहते हैं मेरा जन्म होता ही है संगम पर, जबकि कलयुग का अंत घोर अंधेरा, और सतयुग की आदि घोर सोझरा। संगम पर ही मैं आकर के तुमको समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र हैं, जिनमें मुख्य चित्र तो है शिव बाबा पतित पावन, लक्ष्मी नारायण राम सीता, सब इस समय पतित है, अंतिम जन्म में है, वो पतित पावन कैसे हो सकते है? ये तो सारी दुनिया पतितों की है। अगर शिव बाबा ना आता तो सब भरतनाट्य पहनी होते। बलियारी शिव बाबा की है जो आकर के हम पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय तो सब तमो प्रधान पतित हैं, इसलिए सब दुखी हैं। परम धाम से पहले पहले आत्मा आती है पावन, तो सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजोतम में आना पड़ता है। दुनिया की हर चीज का ऐसे ही होता है, हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है। छोटा बच्चा भी पहले सतो प्रधान होता है, उसके लिए भी कहते हैं ब्रह्मज्ञानी और बालक एक समान, फिर सतो रजोतम में आना ही है, चेंज तो करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनना है। ये दुनिया भी पहले सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान सिर्फ बाप ही आकर के बना सकते। क्यों? दूसरा कोई क्यों नहीं बना सकता? इतने बड़े बड़े ग्रेट फादर्स हुए हैं, इतनी बड़ी जनरेशन उनको मानती है, इब्राहिम, क्राइस्ट, बुद्ध, फिर वो सतो प्रधान क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो खुद ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। एक शिव बाबा ही है जो कभी सतो रजो तमो चार अवस्थाओं से पसार नहीं होता। सिख लोग कहते भी हैं है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य, और अभी भी सतो प्रधान है। ऐसे बाप को न जानने के कारण फिर सबको याद करते रहते। कितने ढेर के ढेर चित्र बनाते हैं, परंतु उनमें भी हर एक का कोई मुख्य जरूर होता है। जैसे कि बाबा के पास भी बहुत चित्र रहते थे, उनमें भी मुख्य श्री नारायण का था। सिख धर्म का होगा तो बल शिव बाबा का, लक्ष्मी नारायण का, राम सीता आदि का रखा होगा, तो भी वो गुरु नानक को अधिक मान्यता देंगे, गुरु नानक को अधिक याद करेंगे। परंतु ऊंचते ऊंच भगवान तो एक ही है, उनकी महिमा भी लिखी हुई है, सत्यनाम कर्ता पुरुषा काल मूर्त, सतयुग आदि है सत्य, है भी सत्य, अर्थात ये जो दुनिया का चक्कर है, वो दुनिया में चक्कर तो सब जरूर लगावेंगे, तो सब सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। एक बाप ही है, वो सब आत्माओं का बाप है, वो कभी तमो प्रधान सतो प्रधान नहीं बनता है। उसको कहते ही है सत्य चित्त आनंद। ये सब बातें बाप बेट समझाते हैं। भक्ति मार्ग में गोरे कृष्ण का मंदिर अलग, सांवरे कृष्ण का मंदिर अलग दिखाते हैं। कहां फिर शिव का भी चित्र रखते हैं तो लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन तो दोनों का नहीं जानते। बाप आकर के अभी तुम बच्चों को सच के आज मध्यंत का राज समझाए, सुदर्शन चक्रधारी बनाए, तुमको चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। 17664 की वाणी का तीसरा पेज। बल तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी देखो इसे पढ़ाई का कोर्स उठाते हो। इन बुढ़ियों से भी पूछो तुम कहाँ जाती हो, तो कहेंगी हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं। भगवान वाच, हम तुमको भी सो देवी देवता बनाता हूँ। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए, परंतु ऐसे नहीं कि सतयुग में सबको भगवान भगवती का राजा कहेंगे, भगवान भगवती का राज्य कहेंगे। नहीं, वो है आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य। बल विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण, परंतु वो तो जानते नहीं है। दिलवाला मंदिर जैसा एक भी पुराना मंदिर और भी है। अमेरिकन लोग जब देखते हैं ये तो देवताओं के चित्र हैं। तो एक एक मूर्ति का लाख लाख रुपया भी दे देते हैं। प्राचीन चीजें देखते हैं, तो कहते हैं इस दरवाजे का क्या देंगे, 5 लाख रुपया भी देने को तैयार हो जाते हैं, तो भी वो देते नहीं है, क्योंकि पुरानी से पुरानी चीजें हैं ना। अब तुम तो जानते हो कि पुरानी से पुरानी 5000 वर्ष की बात है। सबसे पुराने तो इन देवी देवताओं के चित्र हुए। तो भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू हुआ तब उन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया। बाप समझाते हैं भारतवासी कितने साहूकार थे। अभी तो भारत नरक बन गया है, बिल्कुल भिखारी कंगाल बन गया है। ऐसे भारत की हिस्ट्री फिर से रिपीट होनी चाहिए। तुम बच्चों को सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। सतयुग में तो इन देवताओं को कुछ भी पता नहीं होगा। ये ज्ञान सतयुग में फिर प्रायः लोप हो जाता है। वहां कोई पति तो होते नहीं जो ज्ञान दिया जाए। ये सारी नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। तो फिर कोई बताए ये गीता कहां से आई। वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि बने हुए। नई दुनिया के लिए तो जरूर नई नॉलेज होगी, पुरानी नॉलेज से नई दुनिया थोड़े ही बनेगी। इस्लामियों की क्या नई नॉलेज थी, उसको तो ज्ञान कहेंगे भी नहीं। इब्राहिम आया तो आकर के इस्लाम धर्म स्थापन किया। तो कहेंगे उन्होंने नई नॉलेज दी। यहां ये गीता रामायण आदि सब झूठे, बहुत झूठे कलंक बैठ लगाए हैं। बाप कहते हैं मेरी नंबर वन ग्लानी करते हैं जो सर्वव्यापी कह देते। जब ऐसी ग्लानी होती है भारत महान दुखी बन जाता है, तब मैं आता हूं। इस समय तो सब पतित हैं, तो सबको सारे विश्व को पावन बनाने में ही आता हूं। इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए पावन दुनिया की स्थापना कराता हूं। कहते हैं इस पुरानी दुनिया को तुम भूल जाओ, मन मना भव बाप और वर्षे को याद करो। तुम ये राजयोग सीख करके फिर सो देवता बनते हो, ये है ही राजयोग सीखने की गॉडफादर यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी कॉलेज हॉस्पिटल है, परंतु देखो तुमको तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। बाप कहते हैं हम तुमको सारे विश्व का मालिक बनाए रहा। अभी देखो बड़ी मुश्किलात से ये मकान बनाया है, परंतु फिर भी हमको तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। परंतु ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है। हॉस्पिटल से हेल्थ है और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। बाप कहते हैं हम पढ़ाने आए हैं, परंतु देखो तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। तो कहता हूं मैं तो हूं ही गरीब निवास, ये कन्या माताएं तो बिल्कुल गरीब होती हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। बाप का बच्चा, बाप का वर्षा भी बच्चों को मिलता है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है, परंतु हाफ पार्टनर बनती कहां है, ऐसे ही कह देते हैं। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति ही गुरु है, ईश्वर है, सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसा थोड़ी कहना चाहिए, मैं गुरु हूं ईश्वर हूं और तुम मेरी दासी हो। अभी बाप आकर के दासी पने से छोड़ाते हैं। कहते हैं पहले लक्ष्मी फिर नारायण, तो ये भी कॉलेज है। अच्छा मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार मुड़ मांगना।